Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Prashnopanishad, presented by Vishwamatmananda Guruji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Atharva Vediya Brahman Bhag ki Prashnopanishad ka vichar hum log kar rahe hain. Is Upanishad ke छह प्रश्नों में से चतुर्थ प्रश्नात्मक प्रकरण का विचार हो रहा है। इसी चतुर्थ प्रकरण से मुंडकोक्त पराविद्या का व्याख्यान प्रश्नोपनिषद में प्रारंभ होता है। आचार्य पिपलाद जी के पास आए हुए छह ऋषियों में से गार्ग्य नाम के ऋषि ने पराविद्या की का साधन भूत चर्चा प्रारंभ करने के लिए त्वम पदार्थ तथा तत्पदार्थ शोधन पूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी उपदेश जिन प्रश्नों के द्वारा हो सकता है ऐसे प्रश्न किए। पांच चार प्रश्नों से बताया गया जागृत स्वप्न सुषुप्ति तथा तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा, ये तीनों अवस्थाएं और शरीर की सुरक्षा आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है। आत्मा की उपाधि क्रमतः बाह्य इंद्रिया, अंतःकरण और अज्ञान कहो या अज्ञान विषयक मन की सामान्य अवस्था कहो, इन्हीं की ये तीन अवस्थाएं हैं और प्राण का तीनों अवस्था में शरीर की रक्षा करना धर्म है। और ये उपाधि की अवस्थाएं तथा शरीर संरक्षण रूप कार्य उपहित आत्मा में आरोपित होता है। जैसे जपा कुसुम उपहित स्फटिक में जपा कुसुमगत लालिमा का आरोप होता है, इसलिए उपहित स्वरूप जो तमर्थ है वह नित्य शुद्ध ही है। ऐसा तम पदार्थ शोधन हुआ और तत्पदार्थ का भी शोधन करते हुए पंचम प्रश्न में ये बताया गया कि ये आकाश आदि सारा जगत जिसमें संप्रतिष्ठित है वह समस्त संसार का अधिष्ठान तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ है, समष्टि उपहित चैतन्य। और ये जो वेष्टि उपहित चैतन्य तथा समष्टि उपहित चैतन्य इनके स्वरूप मात्र में कोई भेद न होने से तत्वमसी वाक्य बताता है कि ये दोनों अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। इस प्रकार वेष्टि उपहित त्वमर्थ एवं समष्टि उपहित तदर्थ का जो अभेद ये वाक्यार्थ है और इस वाक्यार्थ ज्ञान का नाम ही पराविद्या है। इस पराविद्या को बताया गया नवम मंत्र में कि ये जो शोधित त्वमर्थ है वह पर अक्षर शब्दित जो परमात्मा है उस परमात्मा में संप्रतिष्ठित होता है, का मतलब उसका स्वभावतः ही अवस्थान उसी परमात्मा में है। घटाकाश का वास्तविक स्वरूप जैसे महाकाश ही है, घटाकाश की उपाधि घट की परिच्छिन्नता का आरोप मात्र घट से घिरे हुए चैतन्य में होता है, आकाश में होता है, और उसे महाकाश से भिन्न सा भ्रांति से देखा जाता है। वस्तुतः उस समय घट के रहते हुए भी वह महाकाश रूप ही है। ऐसे जीव का जो लक्षार्थ है वह हमेशा ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूप ही है। और इस वाक्यार्थ ज्ञान का फल बताते हुए दशम कंडिका में बताया गया था कि इस प्रकार का बोध जिस अधिकारी को होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा ज्ञान जिसे होता है वह सर्वात्मा होता है, उसे सर्वात्म भाव की प्राप्ति। सर्वात्म भाव का अर्थ ही है ब्रह्म भाव, सर्वात्म भाव कहिए, ब्रह्म भाव कहिए, निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति कहिए, ये सब पर्याय शब्द हैं। और जिस रूप तो रूप को प्राप्त हुआ, जिस रूप में प्रतिष्ठित हुआ, वह रूप सर्वावभाषक होने से यह उसी ब्रह्म रूप से सर्वावभाषक भी हो जाता है, सर्वज्ञ होता है। ये जो ब्राह्मण भाग ने ब्रह्मात्म एकत्व का निरूपण किया और ब्रह्मात्म एकत्व का फल भी, एकत्व ज्ञान का फल बताया, यह ब्राह्मण भाग अपने द्वारा उक्त अर्थ को मंत्र से संवादित करने के लिए एक मंत्र बता रहा है। अपने द्वारा उक्त अर्थ के ही समानार्थक, वही अर्थ बताने वाला, इसलिए कहा कि तदेश श्लोक नवम कंडिका, दशम कंडिका में अंतिम वाक्य है तदेश श्लोक। तो तत् का अर्थ है तत्र, यानी ब्राह्मण उक्ते अर्थे, ब्राह्मण भाग के द्वारा जो अर्थ बताया गया, इस अर्थ का प्रतिपादक यह मंत्र भी है। ये तदेश श्लोक इसका अर्थ है। वो मंत्र बताया जा रहा है ग्यारहवां। विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणाभूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ सर्वमेवा विवेश इति। तो ये मंत्र है, इसमें बताया जा रहा है कि यत्र देवैश्च सर्वै देवैश्च सह प्राणा भूतानि और विज्ञानात्मा च संप्रतिष्ठन्ति का अर्थ निकलता है कि जिस तत्व में सारे देव, सर्वैः देवैः शब्द से लेना सभी, यानी तीन विभागों में विभक्त जो जगत है, अध्यात्म अधिदेव अधिभूत, इसमें भूत शब्द से तो अधिभूतात्मक जगत लिया गया और प्राण शब्द से लिया गया अध्यात्म जगत, और देव शब्द से लिया जा रहा है अधिदैव जगत, अध्यात्म का अनुग्रहक जो अधिदैव जगत है उसे यहां पर लिया जा रहा है देव शब्द से। इसलिए अधिदैव सहित अध्यात्म तथा अधिभूत सारा जगत और ये उपाधि है अध्यात्म जगत जिसकी प्राणादि उपाधि है जिसकी वो विज्ञानात्मा प्राणादि से उपहित शोधित तोमर था और जब तक उपाधि के साथ इसका संबंध है तब तक विज्ञानात्मा कहलाता है यानी जीव बुद्धिस्त प्रतिबिंब ये विज्ञानात्मा है तो जीव भाव भी ब्रह्म में कल्पित है। जैसे आकाशादि जगत अध्यारोपित है ऐसे अध्यात्म बुद्धि भी ब्रह्म में कल्पित है और बुद्धि के अधिष्ठानभूत ब्रह्म का चिदाभास पड़ता है प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में उसे कहा गया विज्ञानात्मा। ये भी कल्पित ही है किसमें ब्रह्म में। तो यत्र शब्द से ब्रह्म को लिया जाता है परमात्मा को लिया जाता है। तो यत्र यानी जिस परमात्मा में जगत अधिष्ठान में ये सारा विज्ञानात्मा तो हुआ भोक्ता और बाकी प्राण शब्द तथा अधिदैव शब्द से कहा गया अधिदैव एवं अध्यात्म जगत हुआ उपकरण भोग का और भूत शब्द से कहा गया अधिभौतिक जगत है भोग्य। तो भोक्ता भोगोपकरण तथा भोग्य अधिभूत जगत ये सब का सब यत्र यानी यस्मिन परमात्मनि संप्रतिष्ठन्ति यानी अध्यारोपिता भवन्ति जिसमें अध्यारोपित है और ज्ञान होने पर अधिष्ठान का ज्ञान होने पर अध्यस्त वस्तु कहां जाती है। रस्सी का ज्ञान होने के बाद जो रस्सी पर सर्प दिख रहा था वह कहां गया। कहीं गया नहीं वह रस्सी ही उस रूप में दिख रही थी वो रस्सी में ही समाविष्ट हो गया। रस्सी से अलग था ही नहीं अज्ञान से वह रस्सी का ही विपरीत रूप बन करके भास रहा था। जैसे ही रस्सी का ज्ञान हुआ तो वह रस्सी में ही प्रविष्ट हो गया रस्सी में ही विलीन हो गया। ऐसे ही ये भोक्ता भोगोपकरण और भोग्य सारा जगत यह कब तक प्रतीत होता है जब तक अधिष्ठान अज्ञात है। अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है अज्ञान है तभी तक ये भोक्ता भोग्य भोगोपकरण रूपी त्रिपुटी प्रतीत होती है द्वैत प्रतीत होता है। और जिस जैसे ही अधिष्ठान को जान लिया तो फिर ये सारा का सारा अधिष्ठान में ही संप्रतिष्ठित होता है का मतलब अधिष्ठान से अतिरिक्त है ही नहीं ये निश्चय हो जाता है। अधिष्ठान ही अधिष्ठान है उससे अलग और कुछ है ही नहीं इस प्रकार का निश्चय हो जाता है। तो पहले तो ये अधिष्ठान बताया यत्र शब्द से तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ के रूप में यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया जा रहा है उत्तरार्ध में तद अक्षरम वेदयते यस्तु सौम्य यहां पर तत्शब्द से उसी को लेना है। तो यह हे सौम्य ऐसा गार्ग्य को संबोधित करके आचार्य पिपला जी कह रहे हैं और यहां तो ये मंत्र है मंत्र कह रहा है, आचार्य के मुख से शिष्य को हे सौम्य ऐसा संबोधित करके, तो यह यानी जो जिज्ञासु उत्तम जिज्ञासु उत्तम अधिकारी तद अक्षरम वेदयते, तद अक्षरम यानी ये सारा भोक्ता भोग्य भोगोपकरण रूप जगत जिसमें अध्यस्त है उस अधिष्ठान रूप अक्षर को, अधिष्ठान रूप अक्षर है परमात्मा ब्रह्म, और उसे यह वेदयते जो मैं के रूप में जानता है, वो सारा जगत जिसमें अध्यस्त है, जो समस्त द्वैत का अधिष्ठान है वह मैं हूं, ऐसा यहां पर जगत अधिष्ठान का स्व से अभिन्नतया स्वरूपतया बोध, स्वस्वरूपतया बोध उसे लेना यहां पर यह तद अक्षरम वेदयते इस वाक्यार्थ के रूप में। तो इस यानी तत्वमसी वाक्य का जो अर्थ है वही यह तद अक्षरम वेदयते का निकलेगा, वह अक्षर मैं हूं ऐसा जो जानता है। तो जिसने ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव कर लिया तो उसका ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त हो जाएगा, उस ज्ञान से इस वाक्य से उत्पन्न हुआ जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार है वृत्त्यात्मक, वो क्या करेगा, वह आवरण को भंग करेगा। आवरण को निवृत्त करने के लिए वृत्ति व्याप्ति मानी गई है ब्रह्म में भी। जब तक ब्रह्मात्म एकत्व विषयक वृत्ति प्रमात्मिका नहीं बनेगी तब तक ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान बुद्धिस्थ जाता नहीं है। जिस वस्तु का अज्ञान है उस वस्तु के आकार की प्रमा बुद्धि में होनी चाहिए, वह उसी प्रमा से चला जाता है। ये नहीं कि घट का अज्ञान हो और वो चला जाए पट के ज्ञान से, ऐसा नहीं होगा। पट का अज्ञान पट के ज्ञान से निवृत्त होगा, घट का अज्ञान घटाकार वृत्ति से ही दूर होगा। ऐसे ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान की निवृत्ति ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कारात्मिका वृत्ति से ही होगी। जो अनादि काल से ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान बुद्धि में है वह निवृत्त होगा जब जगत अधिष्ठान ब्रह्म मैं हूं ऐसा करामलकवत साक्षात्कार होगा। हाथ में रखे हुए अवले का जैसे संशय और भ्रांति रहित दृढ़ निश्चय होता है कि ये अवला ही है, ऐसे मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म से यत किंचित भी भिन्न नहीं हूं, ऐसा संशय विपर्य रहित दृढ़ निश्चय रूपा वृत्त्यात्मक ज्ञान ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान को दूर करेगा। जैसे ही वो आवरण रूपी अज्ञान दूर होगा तो ब्रह्म चेतन होने से फिर हमेशा हमेशा जिसके बुद्धिस्थ ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान निवृत्त हुआ उसके बुद्धि में मैं के रूप में स्फुरित होता ही रहेगा, वो उस पर फिर कभी आवरण नहीं आएगा। ये जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है वह तो अज्ञान को निवृत्त कर देता है, अज्ञान उससे निवृत्त हुआ और ये उत्पन्न हुई वृत्ति थी वह जातस्य ध्रुव मृत्यु के अनुसार नष्ट भी होगी, उत्पन्न हुई है तो जो महावाक्य से उत्पन्न हुआ वृत्त्यात्मक साक्षात्कार है वह हमेशा टिका रहता है कि नष्ट होता है, उनष्ट होता है अज्ञान को दूर करके। तो जब अज्ञान को दूर किया और ये वृत्ति चली गई तो फिर दोबारा अज्ञान बुद्धि में छा सकता है कि नहीं छा सकता? एक बार आकाश में बादल आ गए, उसने हमारे नेत्रों को ढक दिया बादलों ने, फिर ऐसी जोर की हवा चली, उन बादलों को छिन्न विच्छिन्न कर दिया, हटा दिया, तो दोबारा आकाश में बादल नहीं आते हैं क्या? ऐसे अहम ब्रह्मास्मि एक वृत्ति तत्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई, उसने ब्रह्मात्म एकत्व विषयक अज्ञान हटा दिया बुद्धिस्त, अज्ञान रूपी बादल को, आवरण को। अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वायु ने हटा दिया, तो दोबारा फिर अज्ञान रूपी बादल नहीं आएंगे? आ सकते हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कौन कौन कह रहे हैं? तो ये होता है कि जो एक बार अज्ञान बाधित हुआ तो दोबारा फिर वो द्वैत दिखा सकता है, ऐसी शंका कोई करते हैं, लेकिन केनोपनिषद ने बताया कि ये जो अज्ञान को दूर करने वाली वृत्ति है ना, विद्या अहम ब्रह्मास्मि, ये क्या करती है? ये आपकी परम हितैषी है। इसको उपनिषदों में कहा कि सबसे बड़ा हित यही है। तो जो सबसे ज्यादा हित होता है वो आपको जीवन भर के लिए हमेशा हमेशा के लिए निश्चिंत कर देता है। ये जो बीच में शंका हो सकती ना कि वृत्ति चली जाने के बाद हटा हुआ जो अज्ञान है वो फिर आकर के घर कर सकता है, लेकिन ये वृत्ति जाते जाते केनोपनिषद बताती है आपके बुद्धि में एक ऐसा सामर्थ्य प्रदान करके जाती है कि वो सामर्थ्य बुद्धि का कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए ये केनोपनिषद मंत्र में लिखा कि वीर्यम विद्यया विन्दते अमृतम, विद्यया अमृतम वीर्यम विन्दते, ऐसा अन्वय। तो विद्या यानी ये जो वृत्ति है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति, ये आपके चित्त में उदित होते ही पहले जिसको हटाना है उसे हटाएगी, आपको आपके स्वरूप के साथ अच्छी तरह से जोड़ देगी, आपकी अहंता को सुरक्षित वहां पर स्थापित करेगी अच्छी तरह से। जैसे किसान खलियान में पहले बैलों से वो अनाज निकाला जाता था ना, जो भुट्टे होते थे वो निकाल करके गेहूं आदि सब खलियान में डालते थे, उस पर बैल चलाते थे, दो दो लाइनें तीन तीन लाइनें बैलों की चलती थी, तो उसके लिए वो एक बीच में मेड़ गाड़ा करते थे,